एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र AI की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनका नाम सुनते ही लगता है जैसे दिमाग सीधे तारों और ब्लैक होल्स की सैर पर निकल गया हो।
स्टीफन हॉकिंग, एक ऐसा नाम जो विज्ञान और इंसानी जज्बे दोनों का प्रतीक है।
बिल्कुल, स्टीफन हॉकिंग मतलब 1942 से 2018 तक का उनका जीवन। वो सिर्फ एक महान वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि एक तरह से सांस्कृतिक आइकॉन बन गए।
उन्होंने मुश्किल साइंस को आम लोगों तक पहुंचाया।
हाँ, और ये दिखाया कि अगर इरादा पक्का हो तो शारीरिक मुश्किलें भी आपको रोक नहीं सकती।
सही बात है।
और उनके जीवन से जुड़े कुछ मतलब अजीब से संयोग भी हैं, जैसे उनका जन्म 8 जनवरी 1942, वो गैलीलियो गैलीली की 300th पुण्यतिथि थी।
हाँ, और उनकी मृत्यु 14 मार्च 2018, वो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन और पाई डे भी था।
कमाल है, लगता है जैसे किस्मत ने भी कुछ इशारे किए हों।
वाकई, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हॉकिंग के जीवन, उनके जो जबरदस्त विचार थे, और विज्ञान और हमारी संस्कृति पर उनका क्या असर रहा, उसे थोड़ा समझें।
ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस दौर से जब हॉकिंग का काम सामने आ रहा था। ये 20वीं सदी का दूसरा हिस्सा और 21वीं सदी की शुरुआत थी, है ना?
हाँ बिल्कुल, वो दौर था जब कोल्ड वॉर की वजह से स्पेस रेस चल रही थी, तो आम लोगों में भी दिलचस्पी बढ़ रही थी ब्रह्मांड को लेकर।
अच्छा,
और टीवी वगैरह आ गया था, तो विज्ञान थोड़ा घरों तक पहुंच रहा था। और वैज्ञानिक स्तर पर देखें तो आइंस्टाइन के बाद का समय था, लोग उनकी थ्योरीज की हदों को टटोल रहे थे, जैसे ब्लैक होल, बिग बैंग, ये सब रहस्यमयी चीजें।
यानी माहौल एकदम तैयार था बड़े सवालों के लिए। और हॉकिंग के समय के दूसरे बड़े नाम कौन थे? आपने रोजर पेनरोज का जिक्र किया था।
जी हाँ, रोजर पेनरोज, उनके साथ हॉकिंग का शुरुआती काम, खासकर सिंगुलैरिटी थ्योरम पर वो बहुत अहम था। फिर किप थॉर्न और जॉन प्रेस्किल जैसे वैज्ञानिक थे जिनके साथ उनकी वो मशहूर ब्लैक होल वॉर्स चली, मतलब ब्लैक होल को लेकर लंबी बहसें।
अच्छा, वो बहसें, हाँ।
और हाँ, कार्ल सेगन, रिचर्ड फाइनमैन जैसे लोग भी थे जो साइंस को पॉपुलर बना रहे थे।
और वो एक बड़ा सपना भी था, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसा सिद्धांत जो सब कुछ समझा दे।
बिल्कुल, वो खोज चल रही थी, तो इसी माहौल में हॉकिंग की सोच, उनके विचारपन पे, उनकी अपनी कहानी भी तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से ही शुरू हुई।
हाँ, उनके शुरुआती जीवन पर आते हैं। जन्म ऑक्सफोर्ड में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, परिवार काफी पढ़ा लिखा था ऐसा सुना है।
हाँ, उनके माता पिता फ्रैंक और इजोबेल दोनों ही काफी इंटेलेक्चुअल थे। घर का माहौल भी किताबी किस्म का था, थोड़ा अलग सा। पिता बायोलॉजिस्ट थे, माँ ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थी, जो उस जमाने में महिलाओं के लिए बड़ी बात थी। कहते हैं बचपन में हॉकिंग पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, औसत ही थे, पर सोच शायद थोड़ी हटकर थी। तभी तो स्कूल के दोस्त उन्हें मजाक में आइंस्टीन बुलाते थे।
अच्छा, फिर ऑक्सफोर्ड में फिजिक्स पढ़ी, लेकिन वहां थोड़े कह सकते हैं उदासीन से रहे। असली मोड़ कैम्ब्रिज में आया।
सही कहा, कैम्ब्रिज में उन्हें कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड विज्ञान में अपनी असली रुचि मिली। लेकिन तभी सिर्फ 21 साल की उम्र में 1963 में उन्हें वो खबर मिली जिसने सब बदल दिया।
ALS का पता चला।
हाँ, एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, और डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल हैं।
सोचकर भी डर लगता है, इतनी कम उम्र और ऐसी बात। लेकिन उन्होंने तो इस भविष्यवाणी को झुठला दिया
पूरी तरह से। यही उनकी इच्छा शक्ति थी, वो डायग्नोसिस, और फिर जेन वाइल्ड, जिनसे उनकी सगाई हो चुकी थी और 1965 में शादी हुई, इन दोनों चीजों ने उन्हें एक नई अर्जेंसी दी, एक नई तेजी दी। उन्होंने फैसला किया कि जितना भी समय है उसमें वो अपना काम पूरा करेंगे।
और वो काम में डूब गए, यहीं से उनके वो क्रांतिकारी विचार आने शुरू हुए।
शरीर जो धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था।
जबरदस्त, तो उन्होंने रॉजर पेनरोज के साथ मिलकर क्या साबित किया था सिंगुलैरिटी के बारे में?
हाँ, उन्होंने गणितीय रूप से दिखाया कि अगर आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी सही है तो ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई होगी, मतलब बिग बैंग। ये एक बहुत बड़ा कदम था।
और फिर आया उनका सबसे ज्यादा चर्चित काम, हॉकिंग रेडिएशंस, 1974 में। ये क्या था कि ब्लैक होल पूरी तरह ब्लैक नहीं होते?
हाँ, ये बिल्कुल चौंकाने वाला आइडिया था। तब तक तो यही मानते थे कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, रोशनी भी नहीं। लेकिन हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब नियमों को जनरल रिलेटिविटी के साथ मिला दिया,
जो अपने आप में बड़ी बात थी।
बहुत बड़ी बात, आइंस्टाइन का यूनिवर्स बड़ा स्मूथ था और क्वांटम दुनिया छोटी अजीब घटनाओं वाली। हॉकिंग ने दिखाया कि ब्लैक होल के किनारे पर इन दोनों दुनियाओं के मिलने से कुछ होता है।
क्या होता है? कुछ बाहर निकलता है?
हाँ, उन्होंने दिखाया कि क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से ब्लैक होल बहुत धीरे धीरे कुछ कणों को बाहर फेंकते हैं। इसी को अब हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं है, वो धीरे धीरे ऊर्जा खोकर खत्म हो सकते हैं, वाष्पित हो सकते हैं।
कमाल है, इस एक विचार ने तो ब्लैक होल की पूरी पिक्चर ही बदल दी होगी।
बिल्कुल, और दो बड़ी थ्योरीज के बीच एक पुल भी बना दिया। उनकी वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज भी चलती रही। इसी में उन्होंने मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म का आइडिया दिया। ये क्या चीज है? ये विचार उन्होंने अपनी किताब द ग्रैंड डिजाइन में दिया। इसका मूल आइडिया ये है कि हम दुनिया को समझने के लिए वैज्ञानिक मॉडल बनाते हैं। अगर कोई मॉडल यूनिवर्स को सही सही समझाता है, उसकी भविष्यवाणी करता है और उसके लिए किसी भगवान या बाहरी ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, तो हॉकिंग के हिसाब से वही मॉडल हमारी असलियत है। उन्होंने तर्क दिया कि फिजिक्स के नियम ही काफी हैं ये बताने के लिए कि यूनिवर्स कैसे बना और क्यों है, किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं।
अच्छा, मतलब उन्होंने विज्ञान को सिर्फ फॉर्मूलों तक नहीं रखा, उसे जिंदगी के बड़े सवालों से जोड़ा। हम कहां से आए, यूनिवर्स क्यों है,
यही उनकी खासियत थी। उन्होंने साइंस को एक फिलोसॉफिकल गहराई दी। और उनकी किताबों की बात करें तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 1988 में आई थी, है ना, वो तो एक फिनोमेना बन गई थी।
हाँ हाँ, मैंने भी कोशिश की थी पढ़ने की, रातों रात बेस्ट सेलर। ऐसा क्या था उसमें खास?
सबसे बड़ी बात थी भाषा। हॉकिंग ने स्पेस टाइम, ब्लैक होल, बिग बैंग जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को इतने सरल तरीके से समझाया कि आम पाठक भी समझ सके। स्टाइल सीधा क्लियर था और ह्यूमर भी था बीच बीच में।
हाँ, मजाकिया अंदाज।
उन्होंने साबित किया कि सीरियस साइंस भी दिलचस्प हो सकती है। करोड़ों कॉपी बिकी उसकी।
और वो उदाहरण भी देते थे, जैसे स्पेस टाइम के मुड़ने को समझाने के लिए हो रबर शीट पर रखी गेंद वाला उदाहरण।
बिल्कुल, ऐसी ही एनालॉजीज का इस्तेमाल करते थे वो। उनकी बात की किताब द यूनिवर्स इन अ नटशेल में भी तस्वीरें और एनालॉजीज खूब थीं। और फिर वो द ग्रैंड डिजाइन लियोनार्ड म्लुडेनो के साथ, जिसने मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म वाला आइडिया दिया और काफी बहस भी हुई उस पर।
उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा था ना, अपनी बेटी लूसी के साथ।
हाँ, जॉर्ज सीरीज जो साइंस को कहानी में पिरोती है, ये दिखाता है कि वो हर किसी तक, हर पीढ़ी तक विज्ञान पहुंचाना चाहते थे।
अगर उनकी तुलना करें दूसरे वैज्ञानिकों से, तो पेनरोज के साथ सहयोग तो हमने देखा, किप थॉर्न और जॉन प्रस्किल के साथ वो ब्लैक होल वॉर्स क्या थी? क्या वो बस कोई शर्त वगैरह थी?
नहीं, वो सिर्फ शर्त नहीं थी, वो फिजिक्स के एक बहुत गहरे सवाल पर बहस थी, इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। सवाल ये था कि क्या ब्लैक होल में गिरने वाली चीज की सारी जानकारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? अगर हाँ, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के खिलाफ जाता।
अच्छा, तो इस पर सालों बहस चली।
हाँ, सालों तक। और आखिर में हॉकिंग को मानना पड़ा कि शायद जानकारी नष्ट नहीं होती। ये उनके वैज्ञानिक ईमानदारी भी दिखाता है।
सही बात है। और आम लोगों के लिए तो वो आइंस्टीन के बाद सबसे बड़े साइंटिस्ट बन गए थे।
हाँ, पब्लिक परसेप्शन में उनकी इमेज ऐसी ही बन गई थी। वो कार्ल सैगन और रिचर्ड फेनमैन की तरह ही थे, जिन्होंने विज्ञान को लोगों से जोड़ा।
तो उनकी विरासत क्या है, आज वो कितने रेलिवेंट है हमारे लिए?
हॉकिंग की विरासत दोहरी है कह सकते हैं। एक तो उनकी साइंटिफिक खोजें, खासकर ब्लैक होल्स और यूनिवर्स की शुरुआत पर उनका काम, वो आज भी रिसर्च की नींव है।
और दूसरा?
दूसरा उनका कल्चरल इम्पैक्ट। वो व्हीलचेयर वाली इमेज, वो कंप्यूटर वाली आवाज, वो सब इंसानी इच्छा शक्ति का, इंटेलेक्चुअल हिम्मत का सिंबल बन गया।
उन्होंने साइंस राइटिंग का तरीका भी बदल दिया। ये दिखाया कि मुश्किल बातें भी आसानी से, दिलचस्प तरीके से बताई जा सकती हैं। आज जो ब्रायन ग्रीन या नील डिग्रेसे टाइसन जैसे लोग लिख रहे हैं,
हाँ, वो कहीं ना कहीं हॉकिंग के बनाए रास्ते पर ही चल रहे हैं। और उनके विचार आज भी जरूरी लगते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर उनकी चेतावनी हो या क्लाइमेट चेंज पर उनके विचार। और ब्लैक होल पर उनका काम, हॉकिंग रेडिएशन, इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स, ये आज भी फिजिक्स के बड़े अनसुलझे सवाल है जिन पर रिसर्च चल रही है।
उनके कुछ कोट्स भी बहुत फेमस हुए, जैसे वो कहते थे, हम सिर्फ एक एडवांस नस्ल के बंदर हैं जो एक मामूली तारे के छोटे से ग्रह पर रहते हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, ये हमें खास बनाता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि हम कितने छोटे हैं पर हमारी समझ कितनी बड़ी हो सकती है। और एक और गहरा सवाल जो उन्होंने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में पूछा था, अगर कोई एक ही थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है भी, तो वो बस कुछ नियम और समीकरण है। वो क्या चीज है जो इन समीकरणों में जान डालती है और एक यूनिवर्स बनाती है?
वाओ, मतलब सिर्फ इक्वेशन जानना काफी नहीं, उसके पीछे का रहस्य वो गहरा है। और अपनी हालत पर भी उन्होंने कहा था, शांत लोगों के दिमाग सबसे तेज होते हैं।
हाँ, ये उनकी अंदरूनी ताकत दिखाता है, और ये वाला तो जैसे उनकी जिंदगी का मंत्री लगता है। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल लगे, हमेशा कुछ ऐसा होता है जो आप कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। जरूरी ये है कि आप हार ना माने।
सच में बहुत प्रेरणादायक। कुछ और दिलचस्प बातें भी उनके बारे में, जैसे उन्हें कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला।
हाँ, ये सवाल अक्सर आता है, शायद इसलिए कि उनके काम ज्यादातर थियोरेटिकल थे और नोबेल के लिए अक्सर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए होता है, जो उनके काम के लिए मिलना मुश्किल था।
अच्छा,
लेकिन उन्हें बाकी सारे बड़े अवार्ड्स मिले, और वो कैम्ब्रिज में गणित की लुकासियन प्रोफेसर बने, वो पद जो कभी न्यूटन के पास था।
वाह,
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हाँ, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दिया था।
और उनकी आवाज, 1985 में ट्रैकियोटोमी के बाद आवाज चली गई, फिर वो कंप्यूटर वाली आवाज, वो तो उनकी पहचान ही बन गई।
हाँ, वो सिंथेसाइजर वाली आवाज पूरी दुनिया में पहचानी जाने लगी। उनके जीवन पर जो फिल्म बनी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग 2014, उसने भी उनकी कहानी, खासकर उनके और जेन वाइल के रिश्ते को और लोगों तक पहुंचाया।
स्टीफन हॉकिंग ने वाकई हमें दिखाया कि इंसान की जानने की इच्छा, उसकी जिज्ञासा कितनी ताकतवर हो सकती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो।
बिल्कुल, उन्होंने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया बदला और विज्ञान को कह सकते हैं थोड़ा और मानवीय बनाया।
तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हॉकिंग ने हमें वो जबरदस्त जिज्ञासा और साथ ही एक बौद्धिक विनम्रता दिखाई। आज जब हम AI जैसी नई ताकतों का सामना कर रहे हैं, या शायद यूनिवर्स में कहीं और जीवन खोजने की कगार पर हैं, तो हम अपने अंदर वो जिज्ञासा और विनम्रता का बैलेंस कैसे बना सकते हैं, जैसा हॉकिंग ने दिखाया?
ये बहुत जरूरी सवाल है। शायद हॉकिंग की सबसे बड़ी सीख यही है कि सवाल पूछते रहो, सीखते रहो और कभी रुको मत।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।